ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने वसंत विहार सर्कुलर रूट पर मोहल्ला बस का परीक्षण किया। दिल्ली में ग्रामीण विकास के लिए दिल्ली सरकार ने आज 93 करोड़ रुपए की 900 नई योजनाओं को मंजूरी दी 100 नई योजनाओं को मंजूरी दी। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर करने का आरोप लगाया और प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग आईटीआई फरीदाबाद के परिसर में 16 अक्टूबर को अप्रेंटिसशिप और रोजगार मेले को आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारु सक्सेना। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज वसंत विहार सर्कुलर रूट पर मोहल्ला बस का परीक्षण किया। मोहल्ला बस का करीब 11 किलोमीटर लंबा मार्ग वसंत विहार डिपो से शुरू होगा और एम्बियंस मॉल, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, अरुणा आसफ अली मार्ग, आईआईएमसी, आईआईटी दिल्ली और बेरसराय जैसे प्रमुख स्थानों को कवर करेगा। परिवहन मंत्री कार्यालय ने बताया कि इस मार्ग से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले यात्रियों विशेषकर छात्रों को काफी लाभ होगा। मोहल्ला बस का ये परीक्षण अभी करीब एक सप्ताह तक चलेगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने मीडिया को बताया कि मोहल्ला बसों से दिल्ली के यात्रियों को यातायात से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये 9 मीटर की छोटी बसें हैं जो बहुत आरामदायक बसें हैं।
बस के ट्रायल्स हम अलग अलग दिल्ली के एरिया में कर रहे हैं। 10.8 मतलब 11 किलोमीटर का वन वे ये रहेगा, तो मेरे ख्याल से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा रूट ये रहेगा, क्योंकि लगातार हमें ये फीडबैक मिल रहा था कि इस रूट पे इन सभी लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए हमने ये ट्रायल के रूप में ये चालू किया है और जैसे फीडबैक आएंगे उसी प्रकार से फिर आगे हम और रूट को पिकअप करते रहेंगे।
राजधानी दिल्ली समेत देशभर में स्वच्छता को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने हेतु रेलवे ने स्टेशनों पर स्वच्छता चौपाल लगाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में आज एक बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार ने रेलवे के सभी महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों को ये निर्देश दिया है। रेलवे ने बताया कि चौपाल में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के साथ साथ संबंधित क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित कर स्टेशन की स्वच्छता में बेहतरी हेतु सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे यात्रियों के साथ सीधा संवाद कर उन्हें साफ सफाई, रेलवे सुरक्षा और रेलवे परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक करेगा। साथ ही यात्रियों व स्थानीय जनता से संबंधित सुविधाओं, समस्याओं के संबंध में जानकारी लेकर भारतीय रेल उनमें सुधार करेगा। दिल्ली में ग्रामीण विकास के लिए दिल्ली सरकार ने आज 93 करोड़ रुपए की 100 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने ये निर्णय दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में आयोजित ग्राम विकास बोर्ड की मीटिंग में लिया। एक रिपोर्ट।
विकास मंत्री कार्यालय ने बताया है कि इन योजनाओं के अंतर्गत दिल्ली की सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, शमशान और खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। इनके अलावा चौपालों, बाराज, घर, तालाबों और जलाशयों के निर्माण और मरम्मत कार्य जैसे अन्य आवश्यकता आधारित कार्य भी किए जाएंगे। श्री राय ने जानकारी दी कि बड़े गांवों में बैठने के लिए 100 बेंच और छोटे गांवों में 20 बेंच लगाए जाएंगे। वहीं विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली नगर निगम के माध्यम से किया जा रहा है। विकास मंत्री श्री राय ने बताया कि ग्राम विकास से जुड़ी परियोजना को समय रहते पूर्ण करने के लिए सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया के माध्यम से सुश्री आतिशी ने कहा कि भारत रत्न लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी ने आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करते हुए भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि श्री नारायण के सामाजिक उत्थान के काम सभी के लिए प्रेरणा है। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का शंखनाद कर भारत के महान लोकतंत्र की रक्षा में आदित्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि श्री नारायण को राष्ट्र के मुखर योद्धा के रूप में सदैव याद किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भाजपा ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने राजधानी की वित्तीय स्थिति कमजोर कर दी है। पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली वित्त विभाग की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट घाटे में है और जो खर्चा है वो राजधानी की आय से कहीं ज्यादा है। सुश्री स्वराज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली के बजट के आधिक्य होने के दावे किए थे, परंतु राजस्व की कमी के कारण आवश्यक बुनियादी ढांचों से संबंधित कई बड़े खर्चों का बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया।
माननीय सीएम आतिशी जी ने, जो तब केवल वित्त मंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के बजट के सरप्लस होने की घोषणा करी थी। बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली के पास फालतू पैसा है, लेकिन आप ये देखिए कि इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि दिल्ली में अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना, सैलरीज देना कर्मचारियों को, कर्मचारियों की पेंशन और इस प्रकार के ऐसे कई बड़े खर्चे, इनका बजट में प्रावधान ही नहीं करा।
वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि शहर में चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी अब सरकार के पास बजट मौजूद नहीं है।
सरकारी राजस्व घाटे में है, 7,000 करोड़ की जरूरत है योजनाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन जाते जाते भी अपनी जेब कैसे भरनी है ये आम आदमी पार्टी के नेता सोच रहे हैं। 4 साल में एक विधायक को 40 करोड़ मिलने चाहिए थे, आज तक नहीं दिए गए, 15 ही मिले हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा हार के कारणों की जांच के लिए तथ्य जांच समिति बनाने पर कटाक्ष किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बचाने और हरियाणा में हार के लिए दूसरों को दोषी ठहराने का प्रयास है। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सभी हार के लिए कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पूनावाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस के सहयोगी भी कह रहे हैं कि वे अपने अहंकार और लोगों से नाता तोड़ने के कारण हारे, लेकिन वे अपने सहयोगियों की बात सुनने को भी तैयार नहीं हैं। हरियाणा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज धान की चल रही खरीद का जायजा लेने के लिए कुरुक्षेत्र की पीपली, लाडवा और बाबेन अनाज मंडियों का दौरा किया और अधिकारियों को किसानों की शिकायतें दूर करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को धान का एक एक दाना खरीदने को कहा गया है और किसानों को भुगतान को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1 पैसा भी कम पर धान खरीदेगा तो अधिकारी इसकी जांच करेंगे। नायब सिंह ने कहा कि कल चावल मिल मालिकों के साथ उनकी समस्याओं को जानने के लिए बैठक की गई थी। युवाओं की भर्ती पर एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 25,000 युवाओं की भर्ती का परिणाम जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त 600 किलो से अधिक कोकीन मामले में आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित मुंबई में छापेमारी की। ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। निदेशालय के अनुसार इस मामले के मुख्य आरोपी ने राजधानी के महिपालपुर स्थित गोदाम में मादक पदार्थों की खेप का भंडारण किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने इस साल जून में दुबई और थाईलैंड का दौरा किया था और नशीली दवाओं की आवाजाही और वितरण की योजना बनाने के लिए अपने अन्य सहयोगियों से मुलाकात की थी। इस मामले में आगे की जांच जारी है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा ने नई दिल्ली में धूल उड़ाने की समस्या के समाधान के लिए सड़कों के किनारों को हरा भरा करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने रास्तों को पक्का करने के संदर्भ में मिशन मोड दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। दिल्ली सरकार और अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक में श्री मिश्रा ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों को तत्काल लागू करने के लिए कहा है। वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मौजूदा कानूनों को सख्ती से अपनाने पर जोर दिया। श्री मिश्रा ने निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण रखने के लिए कहा। डॉ मिश्रा ने नगर निगम द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पर्यावरण, गृह और निगम मंत्रालयों को मुद्दों को हल करने और सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का भी काम सौंपा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT और महाराष्ट्र सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य महाराष्ट्र में सरकारी पॉलिटेक्निक और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्षमता प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उद्योग 4.0, 3D प्रिंटिंग और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है। इसका उद्देश्य संयुक्त परियोजना प्रस्तावों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य सरकारी संगठनों से वित्त पोषण प्राप्त करना भी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और महाराष्ट्र सरकार के बीच ये सहयोग सुनिश्चित करेगा कि छात्रों को उद्योग की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त हो। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में शुरू होने वाले इस प्रयास को अन्य राज्यों तक बढ़ाया जाएगा, विशेष रूप से पॉलिटेक्निक संस्थानों, आईटीआई और राज्य में नव स्थापित विश्वविद्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग आईटीआई फरीदाबाद के परिसर में 16 अक्टूबर को अप्रेंटिसशिप और रोजगार मेले आयोजित किया जाएगा। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि मेले में फरीदाबाद और परवल के औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योग भाग ले रहे हैं, जिसमें विभिन्न उद्योगों ने अपनी मांग आईटीआई फरीदाबाद की शिक्षुता और प्लेसमेंट सेल को दी है। रोजगार और अप्रेंटिसशिप पाने के इच्छुक अभ्यर्थी 16 अक्टूबर को आईटीआई फरीदाबाद की शिक्षुता और प्लेसमेंट सेल में आकर सुबह 9 बजे संपर्क कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा की खासी रौनक दिखाई दे रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में रामलीला भी आयोजित की जा रही है। वहीं दुर्गा पूजा के आकर्षक पंडालों में लोगों की भारी भीड़ माँ दुर्गा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रही है। इसके अलावा गरबा और डांडिया का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों जैसे चांदनी चौक, आरकेपुरम, झंडेवाला, छतरपुर, उत्तम नगर, द्वारका, रोहिणी, चितरंजन पार्क, विनोद नगर, जनकपुरी, गोविंदपुरी, विश्वास नगर, मटियाला, गीता कॉलोनी और कृष्णानगर में रामलीला और दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। उत्सव स्थलों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में त्योहारों को लेकर कैसा माहौल है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदर्श।
आज दिल्ली में नवरात्र की अष्टमी और नवमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोगों ने अपने घरों में कन्या पूजन किया और माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनाए गए पंडालों में माँ दुर्गा की भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई है। माँ दुर्गा के दर्शन करने आई दीपिका चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि पंडालों की रौनक से वह काफी उत्साहित है।
अभी हम शिव मंदिर में ठाकुर देख रहे हैं। इतनी भीड़ और साल में एक बार सब लोगों को इस तरह हंसते मुस्कुराते देखकर बहुत अच्छा लगता है। साल के जितने दुख हैं और कष्ट हैं सब भूलकर सब लोगों के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिलती है। तब खूबसूरत पंडाल सजाते हैं तो ये सब देखकर मन में एक उत्साह भर जाता है और माँ के आने की खुशी दुगनी हो जाती है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने वसंत विहार सर्कुलर रूट पर मोहल्ला बस का परीक्षण किया। दिल्ली में ग्रामीण विकास के लिए दिल्ली सरकार ने आज 93 करोड़ रुपए की 100 नई योजनाओं को मंजूरी दी। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर करने का आरोप लगाया। और प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग आईटीआई फरीदाबाद के परिसर में 16 अक्टूबर को अप्रेंटिसशिप और रोजगार मेले आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।